नियमसार कारण कार्य नियम पुस्तक दूसरी लेक्चर नंबर 71। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमिऊनजिनं वीरम् अनन्तमरणानदं सणसहावम् वोच्छामि नियमसारं केवली सुदकेवली भणिदम्। आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह नियमसार नामक ग्रंथ है, उस पर पद्म प्रभ मलधारी देव जी की जो टीका है तात्पर्य वृत्ति, इस पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं वो कारण कार्य नियम अभी हमारे यहाँ दूसरी पुस्तक चल रही है और पृष्ठ संख्या 4 पर हम आ गए, 4। नीचे से दूसरा पैराग्राफ वहां से पढ़ेंगे, ऊपर से तीसरा। यहाँ तो गाथा में ये बात बताई है कि जीवादि जो बहिर तत्व है वो हेय है और आत्मा जिसको कहेंगे वो उपादेय है। तो ये हमने शनिवार को परसों ये देखी थी बात कि 7 तत्व क्या है। तो यहाँ जीवादि को जब हेय कहते हैं, वैसे तो जीव तत्व उपादेय कहना चाहिए था, परंतु यहाँ हेय क्यों कहा, क्योंकि ये पर्याय वाली बात है, मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, नारकी पर्याय, उसकी बात है, इसलिए उसको भी हेय कह दिया। अब ये समझाएंगे और ज्यादा। अहीं परमात्मा कहता हता ए कुंदकुंदाचार्य तेमनी भावना माटे बनाव्यू, इन्हें परमात्मा ने जो बताया उसकी बात कुंदकुंदाचार्य ने जो लिखी वो अपनी भावना के लिए लिखी, स्वयं के लिए लिखी। जीवादि बहिस्तत्वम, जीवादि 7 तत्वों अहीं पुण्य पाप ने भिन्न नति लिधा, तो आश्रव बंध में भी उसको इंक्लूड कर दिया है। शुभ अशुभ भाव ने आश्रव में भेड़ी दीदा छे। जीवनी वर्तमान पर्याय अने पुण्य पापे आश्रव बे, क्या कहा, वर्तमान पर्याय को जुदी ली, वो मनुष्यादि पर्याय को वो जीव कहा, आश्रव अने संवर निर्जरा बंधने मोक्ष, ए 7 तत्वों थया। कौन से 7 तत्व ब्रह्मा? हाँ, बंदर मोक्ष। यहाँ तो 6 बताए, परंतु वो जीव के वर्तमान पर्याय में उसके अजीव को भी जानने वाली है ना, वो तो अजीव द्रव्य को भी ले लिया है ना, तो 7 तत्व। ए 7 तत्वों नो समूह परद्रव्य छे, हाँ हाँ, क्योंकि जीव की पर्याय में वो तो बाह्य तत्व तो परद्रव्य तो पर है ही है, परंतु उसको जानने में जो पर्याय रुक गई है उसकी भी बात कर रहे हैं, अजीव को उसमें भी ले सकते हैं। जीव की पर्याय में दोनों ले लिया है, अजीव को जानने वाली जीव की पर्याय, इस तरह से उसको ले सकते हैं। अब और बताएंगे, अजीव द्रव्य वो परद्रव्य तो पर है ही है, वो तो भिन्न ही है, परंतु अजीव को जानने में जो रुक गई है पर्याय उसका भी यहाँ निषेध है।
आपने बताया 2 प्रकार के जीव
हैं, 2 प्रकार के, नहीं, जीव की वर्तमान पर्याय मनुष्य नारकी वगैरह, अच्छा, उसको जीव की पर्याय कहा। देखो अभी यहाँ कहेंगे फिर से, केवल ज्ञानी, देखो हम जब 7 तत्व कहते हैं कहीं कहीं जीव और अजीव ये द्रव्य तत्व कहने में आते हैं और बाकी 5 पर्याय वाले, यहाँ सबको पर्याय में डाला है, है ना, जीव के पर्याय में दोनों लिए, जीव तत्व और अजीव तत्व, और फिर बाकी तो आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष लिए। उसको भी ले गई या अजीव? अजीव तो भिन्न है ही है उसको भी, क्योंकि है ये कह दिया ना इसमें, जीव की पर्यायों को यहाँ है कह रहे, मोक्ष की पर्याय को भी है ये, वो छोड़ने लायक ऐसा नहीं, उसका आदरणीय नहीं है, इस तरह से उसको है ये कह दिया, क्योंकि सभी तो पर्याय ही लिए ना जीव की पर्याय। जैसे आपने शायद वो आपको याद होगा कलश टीका में हमने देखा था, वहाँ मूल कलश टीका में लिखा है, वहाँ तो नौ पदार्थों की बात है, ये इनमें छिपी हुई आत्मज्योति, तो छिपी हुई उसमें छिपी हुई भी अजीव तो नौ पदार्थों में अजीव पदार्थ भी है, तो वो अजीव पदार्थों में अपनी आत्मज्योति कहाँ छिपी है, तो अजीव की जानने वाली पर्याय को वहां लिया था, क्योंकि वो आत्मा की ही पर्याय है ना, छिपी हुई आत्मज्योति का अर्थ है वो आत्मा की पर्याय में आत्मा ही उसमें प्रसरा हुआ है, कोई अन्य द्रव्य तो उसमें है ही नहीं है, इसलिए वहां कलश टीका में बात की थी। अब यहाँ जीवादि बहिस्तत्व कहने से वो पर्याय रूप ही ले लेना है, इसलिए जीव की वर्तमान पर्याय में दोनों को ले लिया। देखो केवल ज्ञान नहीं पर्याय स्वद्रव्य जय भगवान शुद्ध भाव, स्वद्रव्य किसको कहा? त्रिकाली शुद्ध भाव को स्वद्रव्य कहा, और जो कर्म के निमित्त से भले वो निमित्त का अभाव रूप जो क्षायिक भाव भी है उसको भी परद्रव्य में डाला है इसमें। क्या कहते हैं? केवल ज्ञान नहीं पर्याय स्वद्रव्य जय भगवान शुद्ध भाव त्रिकाल, स्वद्रव्य किसको कहा? शुद्ध भाव त्रिकाली शुद्ध भाव को, त्रिकाली शुद्ध भाव यानी वो पर्याय वाला शुद्ध भाव नहीं, कायम रहने वाला जो स्वभाव भाव है उसको यहाँ शुद्ध भाव कहा, जो त्रिकाल है परमात्म स्वरूप है पोतानो पूर्ण भगवत स्वरूप घट घट अंतर जिन वसे अने घट घट अंतर जैन, घट घट ने प्रत्येक को तो शरीर को घट कहा यहाँ, मत मदिरा के पानसो मत वाला समझे नहीं, यानी समझे नहीं समझ आता है, क्या कहना चाहते हैं? घट घट अंतर जिन वसे यानी जो प्रत्येक जीव है वो जिन स्वरूप है, और मत मदिरा के पानसो जैसे मदिरा का पान करने वाला मत वाला हो जाता है, उसको कोई अपना स्वरूप का भान नहीं रहता है, ऐसे मत मदिरा मत रूपी मदिरा, ये हमारे में ऐसा कहते हैं हमारे में ऐसा कहते हैं, तो सही जो मत है जिनेन्द्र भगवान का मत उसको छोड़कर अन्य जो मति है अन्य मत वालों के जो उनका जो कोई तत्व है उसको मानने वाले हैं, वो कहेंगे मत मदिरा से वो उसका पान किया है ना, उसको उन्होंने श्रद्धा की है, हाँ यानी अन्य मतियों की बात मानकर उन्होंने मिथ्यात्व का सेवन किया है, तो उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसको मतमाला कहें, जैसे मद्यपि जो है बेहोश हो जाता है उसको कोई अपना स्वयं का भान नहीं रहता है, ऐसे इस जीव को भी अपने मैं कौन हूँ इसकी कोई पहचान नहीं है। कहते ना पोताना अभिप्राय मा दारू पे धेला, ये कौन सी वाली अभिप्राय वाली? खोटी मान्यता रूपी अभिप्राय, अभिप्राय कहो मान्यता कहो अभिनिवेश कहो, ऐसे अलग अलग नाम आते हैं, विपरीत अभिनिवेश यानी विपरीत मान्यता खोटी मान्यता, तो ये पोताना अभिप्राय मा दारू पे देला आ सत्ता सात तत्व शू छे समझता नथी, यानी मैं कौन हूँ ये तत्व क्या है ये पर्याय क्या होती है गुण क्या होता है कुछ नहीं समझ रहा है। अहीं तो कहे छे के आ सात तत्व मां संवर निर्जराने मोक्ष पण आव्या, क्योंकि ये तो प्रकट करने लायक है, हमने जब सीखा था तो इसको उपादेय कहा था, मोक्ष तो प्रकट करना है और वो सुख स्वरूप है वो अवस्था में प्रकट करनी है, परंतु कहते हैं कि मैं जिसको कहेंगे वो त्रिकाल है, क्या मोक्ष अनादि से है? अभी तो हमारे पर्याय में मोक्ष ही नहीं है, वो प्रकट होगा परंतु मैं तो अनादि से हूँ, इसलिए उसमें वो मोक्ष पर्याय को भी स्थान अलग लिया, उसका अलग स्थान देके उसको अलग तत्व बनाया, और जो त्रिकाली है उससे भिन्न है ये बात बता रहे, त्रिकाली जो तत्व है वो मोक्ष रूप पर्याय से भी जुदी है, क्योंकि उसमें वो केवल ज्ञान रूपी या मोक्ष रूपी पर्याय अनंत काल तक निकलते रहे तो भी स्वभाव में कुछ कमी नहीं आएगी, और जब मोक्ष पर्याय नहीं थी तब स्वभाव भाव था कि नहीं था, तो कहते वो तो अनादि से विद्यमान है और जैसा का वैसा रहता है कायम, इसलिए उसकी महत्ता लेनी, उसको मैं कह दिया उसको आत्मा कह दिया, और इस बाकी चीज़ों को वो बहिर तत्व कह दिया, परद्रव्य कह दिया। जे मोक्ष मार्ग प्रकाशक मां टोडलमल जी ए संवर ने उपादेय कहो छे। हमने देखा ना वहां तो ये सात तत्व जब हमने याद किए थे सिद्धांत प्रवेशिका में या मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, तो कहते हैं त्यां तो संवर को उपादेय कहा था। उपादेय कैसे? प्रकट करने लायक है, इसलिए उपादेय कहा था। मोक्ष को भी पूर्ण प्रकट करने लायक है। और मैं जीव तत्व कैसा हूँ? त्रिकाली भाव को वहां जीव तत्व कहा था, वो आश्रय करने योग्य उपादेय। निर्जरा ने हितनु कारण कहे छे और मोक्ष परम हित छे एम कहूं छे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में या अन्य कहीं पर इस तत्वों की जब आती है तो इस पद्धति से वहां वर्णन आता है। ए ज्ञान नी प्रधानता थी कथन करियो छे। क्या कहते हैं? वहां ज्ञान की मुख्यता है, उससे वो कथन किया है वैसा। अहीं दृष्टि प्रधान कथन मा, यानी यहाँ तो बस त्रिकाली है, वो मैं हूँ, बाकी वो है बहिर तत्व है, इस तरह से उसको अलग कर दिया। सम्यक, देखो द्रव्य कभी पर्याय बिना नहीं होता। हम कहेंगे सिद्ध भगवान हो गए, तो सिद्ध हुए तो जीव द्रव्य पर्याय चल रही है उसकी, क्या रुक गई अभी? हाँ, चल रही है, क्योंकि परिणाम ना है तो द्रव्य का स्वभाव है। अभी उनकी शुद्ध भाव रूप जो पर्याय चल रही है, सिद्ध पर्याय सिद्ध पर्याय सिद्ध पर्याय, वो अनंत काल तक चलती ही रहेगी, यानी परिणाम ना कभी रुकेगा नहीं उनका। तो यहाँ क्या कहते हैं? ये दृष्टि प्रधान कथन, यानी यहाँ तो शुद्धात्मा जो है, त्रिकाली जो है, वो मैं हूँ, दृष्टि में मैं को स्वीकार है, बाकी मैं छोड़कर बाकी है सब परद्रव्य में डालते। दृष्टि को एक ही का स्वीकार होता है, बस यह मैं हूँ, इतना ही उसमें स्वीकार है। और ज्ञान, वो मैं है उसको भी जानेगा, पर को भी जानेगा, परद्रव्य को भी जानेगा और सभी पूरे लोकालोक को भी जानेगा। ज्ञान के लिए जानने के लिए सब कुछ है, दृष्टि के लिए मात्र मैं का स्वीकार है, यह मैं हूँ, बाकी वो जो चर्चा है ये मैं नहीं हूँ अगर, वो सब ज्ञान में चली जाएगी। बड़ी छोटी कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तो मैं, ज्ञान तो सबको है, क्योंकि ये जानना आत्मा को जान, बिल्कुल, परंतु ये निर्णय किसने किया? प्रत्येक का अपना अपना महत्व है। आप हाँ, जिसके गाना है, जिसकी शादी उसके गाना गाओ। जब दृष्टि की बात करेंगे तो दृष्टि की मुख्यता से कहेंगे, दृष्टि मैं नहीं हूँ, दृष्टि पर्याय है, दृष्टि का विषय मैं हूँ। ख्याल में आती है ना बात? बिल्कुल पलड़ा भारी है उसका। हाँ, दृष्टि जब भी होगी तभी अनुभव होगा, परंतु अनुभव के बिना दृष्टि भी नहीं होगी। नहीं समझे? जब तक आत्मा का अनुभव, वो समय एक ही है उसका, पर अनुभव के बिना दृष्टि नहीं। ऐसे हम की श्रद्धा हो जाए, श्रद्धा हो जाए, श्रद्धा हो जाए, तो कहते नहीं होगी। जिस समय आत्मा का अनुभव हुआ उसी समय वो श्रद्धा में आ गया, उसके पहले नहीं आता। तो ये सारा निर्णय तो ज्ञान में हो रहा है। ये सब जानने की बात हुई ना कि ये सही, अभी तो हमने ये कुछ समझा नहीं था। अभी सात तत्वों के नाम हम समझ रहे हैं, फिर उसमें हम विचार कर रहे हैं, परीक्षा कर रहे हैं, यही सत्य है कि नहीं इसकी बात कर रहे हैं। तो सब ज्ञान में चल रहा है ये, क्योंकि अभी जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो उसके पास दृष्टि तो मिथ्या है, वो मिथ्या दृष्टि से कार्य नहीं हो रहा है। तो उसका जो ज्ञान है प्रकट, उसी के द्वारा ये सब कार्य चल रहा है। फिर भी उसको सम्यक नाम कब हो जाएंगे? जब दृष्टि ज्ञान सब एक साथ हो जाएगी तब उसको सम्यक नाम आ जाएगा उस ज्ञान को, परंतु कार्य तो ज्ञान में ही चलेगा सब। इसीलिए कहते हैं वो निर्णय होना चाहिए कि यही सही है कि निमित्त से कार्य नहीं होता, तो प्रत्येक द्रव्य अपने से ही परिणमता है और हर स्वभाव तो कायम अनादि अनंत वैसा होता है, वो स्वयं सिद्ध होता है, कोई उसका बनाने वाला नहीं होता। ये जब हमने जानकर उसका निर्णय करने तक पहुंचे हमने, तो ये तभी दृष्टि का भी कुछ कार्य चल रहा है ना वहां पर, मान्यता में भी कुछ कुछ बातें हो रही है। पर जब वो मैं को स्वीकार करती है, वो मैं को स्वीकार कब होगा? जिस समय अनुभव होगा तभी। क्योंकि ये दृष्टि अलग है, ज्ञान इधर रहता है और दृष्टि इधर रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, द्रव्य एक है तो वो अखंड है, और उसमें दृष्टि भी है, ज्ञान भी है, सब कुछ चल रहा है एट ए टाइम। यानी जब वो दृष्टि का जब स्वीकार होता है, यानी वहां जो ज्ञान ने स्वीकार किया, उसमें कोई भेद पर नजर नहीं है कि दृष्टि से होगा कि ज्ञान से होगा, कि वो मैं अखंड इस तरह से। क्या कहा, ये जो नीचे से वो तत्प्रीति लिखा ना, उसके ऊपर की लाइन, सम्यक दर्शन जे अनंत काल मा एक समय मात्र पण चीज शू छे, चीज ने मैं स्वयं त्रिकाली भगवान आत्मा शू छे, एने यथार्थ रुचि थी सांभळी नथी, तत्प्रतिप्रीति चित्ते न येन वार्ता पिहि श्रुता। ये गाथा आती है पद्मनंदी पंचविंशति में। यहाँ कहते हैं इसकी ये एक लाइन है, तत्प्रति यानी उसके बारे में प्रीति चित्त से येन वार्ता पिहि श्रुता, जिसने उसकी बात भी अत्यंत रुचिपूर्वक अत्यंत प्रेम पूर्वक सुनी है। तो दूसरी लाइन में कहते हैं निश्चितम स भवेद भव्य भावी निर्वाण भाजन। वो जीव निश्चित ही भव्य है और अल्पकाल में वो मोक्ष का पात्र है, भाजन ने पात्र है, मोक्ष का पात्र है। गाथा आवे ने पद्मनंदी पंचविंशति नी छे, ये पद्मनंदी आचार्य हो गए, उन्होंने 25, ये उसके कुछ 26 होए से है, परंतु उसको 25 पंचविंशति कहते हैं, ऐसे अलग अलग उन्होंने अधिकार लिखे हैं। भगवान आत्मा पूर्णानंदनो नाथ जेमा संवर निर्जरा अने मोक्ष ए पण पर्याय छे, तो पर्याय ए व्यवहारनो विषय छे। पर्याय ने हमने कुछ भेद कर किया ना उसमें, तो वो तो व्यवहार नय का विषय। व्यवहार नय का विषय क्या होता है, भेद। जहाँ भेद पर लक्ष्य हो जाता है या कथन आता है तो उसको व्यवहार नय का कथन करते हैं। तो निश्चय ने से अभेद अखंड होता है, कोई भेद नहीं करना वो निश्चय का। तो व्यवहार ना विषय ने अही परद्रव्य कहू छे, वो व्यवहार का विषय है, भेद हुआ इसलिए उसको परद्रव्य कहा। हमें भेद की नजर नहीं करनी है। परद्रव्य केम कहूं, देखो ये अध्यात्म की परम अध्यात्म की अपेक्षा है, नहीं तो देखो यहां तो परद्रव्य कहा, तो ये परद्रव्य से पर्याय होती है कि पर्याय ही परद्रव्य है, क्या है क्या। तो कहते हैं जहां शुद्धात्मा की बात करनी है उसकी अपेक्षा कहना है। ये अपेक्षा अगर नहीं ख्याल में लेते हैं और सर्वथा मान लेते तो गड़बड़ी हो जाएगी, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। हमने देखा था ना, ये एक द्रव्य ये दूसरा द्रव्य, अरे उसकी पर्याय भी नहीं कर सकता और इसकी पर्याय को हमने परद्रव्य कहा, ये कैसी चीज हो सकती है। ख्याल में नहीं, अपेक्षा क्या है उसको बराबर समझना। परद्रव्य केम कहूं के जेम पोताना सिवाय परद्रव्यमाथी धर्मनी नवी पर्याय उत्पन्न नथी थती, एम संवर निजरानी पर्यायमाथी धर्मनी शुद्धिनी नवी पर्याय उत्पन्न नथी थती। क्या कहना चाहते हैं, देखो आपके पास सोने की बंगड़ी है और आपको अभी कंटाला आया तो हमने आपने उसका एक नेकलेस बनाया अच्छा डिजाइन वाला, तो वो बंगड़ी का नेकलेस होता है कि सोने का होता है। सोने का। बंगड़ी भी सोने की थी, वो सोने की पर्याय थी, तो वो सोने की पर्याय जो है वो केवल बंगड़ी में से वो नेकलेस नहीं हुआ है, सोने में से नेकलेस हुआ। यही कह रहे हैं कि पर्याय में से पर्याय नहीं होती, द्रव्य में से पर्याय होती। द्रव्य उस पर्याय रूप से, अभी इस एक पर्याय रूप से है, वो द्रव्य ही दूसरे पर्याय रूप से परिणमित होता है, क्योंकि वो द्रव्य पूरे द्रव्य का वो परिणमन है। तो यहाँ कहते हैं कि संवर निर्जरा तो पर्याय है, वो पर्याय में से और नई जो नेक्स्ट समय वाली जो संवर निर्जरा की पर्याय होगी या आगे चलकर मोक्ष की पर्याय होगी, वो पर्याय में से नहीं होती है, द्रव्य में से होती है, ये कहना चाहते हैं। सूक्ष्म छे भाई धर्मनी पर्यायनी शुद्धिनी वृद्धि, ये संवर निर्जरा किसको कहते हैं, शुद्धि की वृद्धि को संवर वो निर्जरा कहते हैं। ये पर्याय माथी नथी आवती, पर्याय ना आश्रय नथी आवती, क्योंकि ये दृष्टि किसकी की है, ध्रुव की। तब वो पर्याय स्वयं जो नई पर्याय आने वाली है वो तो शुद्धि की वृद्धि रूप होकर आती है, पर वो पर्याय ने जिसने लक्ष्य किया वो पर्याय में से वो नहीं आ रही, लक्ष्य ध्रुव का किया तो नई बनने वाली पर्याय स्वयं अधिक वो शुद्धि की वृद्धि रूप हो जाती है। तो कहते पर्याय ना आश्रय नहीं आती, पर्याय ना लक्ष्य नहीं आती, क्योंकि लक्ष्य वो ध्रुव का है, तभी पर्याय में वो निर्जरा रूप शुद्धि की वृद्धि होगी। देखो ये जो त्रिकाली, हम यहाँ ध्रुव की बात कर रहे हैं, भगवान आत्मा जो अभी और भी इसका विस्तार से वर्णन चलेगा, इन्हें अपना स्वभाव भाव, तो उसमें मैं स्थापित करके उसमें एकाग्र हुए बिना शुद्धि की उत्पत्ति ही नहीं हुई, संवर भी नहीं होगा, तो निर्जरा होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। और हम क्या समझते हैं, हमने इतने उपवास किए और हमारी निर्जरा हुई, ऐसे मान्यता रहती है कि ये उपवास किए वो तप हुआ और तप के निर्जरा हुए, कुछ नहीं हुआ। जब तक शुद्धात्मा का अनुभव नहीं है तब उपवास करे कुछ भी करे उससे निर्जरा नहीं होती है, एक शुभ भाव है, उससे बंद हो रहा है। निर्जरा तभी शुरुआत होती है जब से उसके आत्मा का अनुभव हुआ है।
लेकिन ऐसा तप करेंगे, सब करेंगे तो अनुभव होगा कि
तप करने से कैसा, तप किसको कहना, राग रहित अपने शुद्ध आत्मा का अवलंबन लेना वो तप है, और उस तप से अनुभव होगा, केवल बाह्य उपवास आदि से अनुभव नहीं होगा। आपको एबीसीडी सीखना है, कितने उपवास करेंगे तो एबीसीडी सीखेंगे, कितनी यात्रा करेंगे तो सीखेंगे, कितना दान देंगे तो सीखेंगे। लौकिक में भी हम देखते हैं कोई चीज सीखना है तो यहाँ हमें आत्मा का अनुभव यानी धर्म की प्राप्ति होगी, संवर निर्जरा तब शुरू होगी। तो वो दान देने से, उपवास करने से, व्रतादि करने से, कहीं यात्रा करने से नहीं होने वाला। कोई कहेंगे हम मुनि दीक्षा ले लेंगे, फिर भी वो बाह्य लिंग जो धारण किया है वो शास्त्रों में लिखा है ना, योगिंद्र दोस्त कितना कहते हैं पोथी पढ़ने से नहीं होगा, सिर का मुंडे ने केश लोच किया और मुनि दीक्षा ली उसके कारण नहीं होता है, तो किस कारण होता है? ये सब अपने पास है, सब विद्यमान है सामग्री, कि मैं स्वयं त्रिकाली हूँ और मुझे ही अपने को ही देखना है, देखना ही नहीं जानना है, इतनी सरल बात है। परंतु जीव में ऐसा कोई, जिसको कहें ऐसी मान्यता भरी हुई कि हम बाह्य में कुछ करें कुछ करें कुछ करें, क्या करें, शरीर की कुछ क्रिया करें तो हमें धर्म होगा, ये मान्यता बहुत अंदर तक घुसी हुई है। और ऐसा ही उपदेश बाह्य में सुनने को भी मिलता है, परस्पर ऐसा ही जीव एक दूसरे का एडवाइस भी ऐसा ही देते हैं, ऐसा सुनते हैं ना, इतना ये करो तो, और जीव भी सोचता नहीं रहे अभी मुझे ये मनुष्य बहुत दुर्लभ है और हमें यही करना चाहिए। तो धर्म का नाम से ये कर रहा है, मानकर कर रहा है, यानी मान्यता में ही उसकी भूल है, कर रहा है वो अच्छा सोचकर, मगर उसका फल तो कुछ नहीं मिल रहा है उसको, क्योंकि मान्यता जब तक नहीं सुधरती। देखो आपका ये प्रश्न है, अंदर से वो मेरे अच्छे के लिए मैं कर रहा हूँ, अच्छे के लिए जो कर रहा है वो सही होगा तो होगा कि नहीं होगा? जैसे हम मेडिकल की बात करते हैं, किसी को कोई रोग हुआ, कोई जल गया, तो अच्छे के लिए, अच्छा होने के लिए उसमें हमने देखा है कोई उसमें वो शेन जिसको कहते हैं गोबर लगाते हैं, कोई इंक डालते हैं, कोई और क्या क्या डालते हैं, जो मन में आए वैसे स्वयं के बुद्धि से उपाय करते हैं, अच्छा सोच के किया है तो, अच्छा सोच के किया तो उसका उपाय बराबर है क्या? वो अच्छा अगर सोचना है तो सही उपाय करे तो उसका फल मिलेगा, अगर वो करने का निषेध नहीं पर मान्यता का निषेध है, कर रहे हैं उपवास आदि ठीक है ना, करो ना, उसमें कोई हम क्या करना क्या नहीं करना उसका उपदेश नहीं है। मान्यता क्या है, पहले में पहले दशा सुधारने की कोशिश नहीं करनी है, दिशा सुधारने की कोशिश कर, धर्म नहीं है वो धर्म नहीं है बस। तो धर्म के लिए हेल्पफुल तो है, बिल्कुल नहीं है, ये धर्म के लिए हेल्पफुल है ये मान्यता गलत है तो छोड़ दे। अरे ये शरीर की क्रिया है, ये छोड़ने के लिए हम पकड़ा कभी है तो छोड़ने की बात है। मूल में क्या करना है, यानी जिसे कहते हैं ना कि जो व्यापारी है वो बैठे बैठे, यानी जैसे एक मजूर है वो बड़े बड़े पत्थर उठाता है, वो भी पत्थर का ही काम करता है, और उसको मजूरी कितनी मिलती है दिन में, 150 हो गए, 200 हो गए, अभी आजकल के जमाने में 500 होगा। और वो जवेरी जो है वो भी पत्थर का काम करता है वो कुछ उठाता बिठाता कुछ नहीं है, तो उसकी कितनी कमाई होती है, ख्याल में आती है बात। ऐसे हम ये मजदूरी कर रहे हैं, ये क्रियाओं की मजदूरी करते हैं और हाथ में कुछ नहीं लगता है, ऐसी अवस्था हो रही है हमारे। इसलिए सही उपदेश ये दे रहे हैं जीवों के कल्याण के लिए। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, क्योंकि लौकिक में तो हम बहुत सियाने हैं कि कौन सा उपाय करना, क्या करना, अरे पढ़ाई भी करना है तो कौन से लाइन में जाए तो मुझे अच्छा मुनाफा होगा, इसके बाद सोच सोच कर करते, ख्याल में आती है कि नहीं। और आपको फिजिक्स का एग्जामिनेशन देना है और केमिस्ट्री पढ़ते बैठो, बहुत अभ्यास किया उसने, बहुत अभ्यास किया, परंतु वो पेपर में क्या लिखेगा, कुछ नहीं आता उसका उस विषय के बारे में। तो यहाँ हमें मोक्ष चाहिए है, आत्मा का अनुभव करने से धर्म प्रकट होता है, और कर रहा है ये सब बाह्य क्रियाएं। तो वो बाह्य क्रिया करो या नहीं करो, धर्म तो होगा ये तत्व ज्ञान के अभ्यास पूर्वक ही। कोई बाह्य क्रिया करते करते इसका अभ्यास करेगा ठीक है, परंतु वो क्रियाओं से उसको लाभ नहीं होने। वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तो कितना क्लियर लिख दिया है कि जो व्रत उपवास आदि करे, इतनी क्रिया करे उतना करे, वो तो इसका अधिकारी नहीं है, मोक्ष का अधिकारी नहीं है। और वहां ऐसा लिखा है, देखो तत्व विचार की महिमा, कि जो ये कुछ नहीं कर रहा है फिर भी वो तत्व विचार कर रहा है। तत्व विचार यानी यही जो 7 तत्व है, 6 द्रव्य है, उनकी परिणमन व्यवस्था है, उसका क्या स्वरूप है, ये उपादेय क्या है, इस बारे में वो तत्व विचार में लगा है, तो उसको वो तत्व विचार के काल में उसको सम्य दर्शन हो जाता है। कुछ नहीं किया उसने बाह्य में, अभी तो व्रतादि कुछ अंगीकार किए नहीं है, तो उसको तो वो अधिकार है। पर कोई ऐसा है कि वो तो मुनि दीक्षा तक ले ली है परंतु उनके ये तत्व का विचार नहीं है, सही नहीं है। केवल कहते कि नहीं मुझे मोक्ष के लिए करना है, मंदव कषाई है, भला है, किसी का बुरा नहीं चाहता है, पाप से निवृत्त हो रहा है, परंतु बड़ा वो मान्यता वाला पाप तो वो तो पाप लगता ही नहीं जीवों को, वो सबसे बड़ा पाप तो वैसा ही रखा है। देखो लौकिक में भी हम देखते, आपके बच्चे कहीं स्कूल में गए थे और रास्ते में अभी कीचड़ ऐसा उसमें गिर गए तो जख्म हुए, अंदर बहुत कीचड़ वगैरह लग गया है, तो घर आया तो आपने क्या किया, उसके ऊपर बिल्कुल अच्छी पट्टी बांध दी, बराबर किया ना, क्या करना चाहिए था, हाँ साफ करना चाहिए था, अंदर जो मिट्टी कीचड़ जो कुछ गंदी बात अंदर चर्म्स गए उसको साफ करके फिर उसके ऊपर पट्टी लगाना था। तो हमने क्या किया, ऐसे ही लगा दिया, क्या होगा, अरे उसके लिए तो फेवरेबल कंडीशन हो गई, वो जंतु जो है वो तो और पनपेंगे, उसमें सेप्टिक हो जाएगा, गैंग्रीन हो जाएगा। ऐसे ही जब तक मिथ्या तो रूपी वो निकालते नहीं अंदर का शल्य, वो तो उसको ऐसा ही रख दिया और व्रतों की पट्टी लगा दी, तो क्या होगा, वो मान रहा है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मान रहा है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, परंतु उसके अंदर वाला मिथ्यात्व वैसा रखकर वो अगर मानता है तो वो मिथ्यात्व दूर करने का मौका भी नहीं रहा, क्योंकि उसने मान लिया कि मैं इसी से आगे बढ़ जाऊंगा। हाँ मिथ्यात्व की पुष्टि कर रहा है, क्योंकि उसने माना है कि मैं आगे बढ़ गया हूँ। कोई ऐसा मानेगा ना, मैंने मुनिवृत्त दान के मैं मेरा 6ठा 7ठा गुणस्थान है, कोई कहेंगे मैं इतने प्रतिमाएं धारण किए मैं तो 5वें गुणस्थान वाला हूँ, अभी तो वो पहले गुणस्थान वाला है, अभी उसका मिथ्या तो ही नहीं टला है, तो उसके लिए वो उपाय क्यों करेगा। उपाय क्या है, तत्व विचार। तत्व विचार कब करेगा, तब सुनेगा तब। इसलिए ये सभी बातें इतनी विस्तार से क्यों लेनी है, इसके लिए देखो यहाँ क्या कहा पेज नंबर 5 पर आते हैं, ये पर्याय के नहीं आश्रय आती है, पर हमने तीसरी लाइन में ये पर्याय सिवाय त्रिकाली भगवान आत्मा, इसी को भगवान आत्मा कहा, बाकी उसको आत्मा कहा, बाकी को परद्रव्य कह दिया। पूर्णानंदनो नाथ प्रभु, पूर्ण आनंद यानी ज्ञान और आनंद का घन पिंड है, अनंत गुणनो सागर, ये अनंत गुणों का अभेद अखंड एक पिंड है, उसको मैं यानी आत्मा कह दिया। एना आश्रय शुद्धि ने पर्याय प्रकट थाय छे, आश्रय लेने वाली तो पर्याय है, तो उस किसके सन्मुख होकर, तो ऐसे त्रिकाली के सन्मुख होकर। अहिया तो अजी दया, देखो अहिया तो अजी दया दान व्रत भक्ति ना परिणाम हेय छे, ए कबूल करवामां पानी उतरी जाय छे, उससे कुछ तो लाभ होगा ना, ये मान्यता है ना, ये तो हमें तो कबूल करना है, छोड़ना नहीं है। मैंने क्या कहा, प्रवृत्ति में से नहीं छोड़ना है आपको, क्योंकि जो ऐसा कबूल करता है उसके भी भक्ति के परिणाम आ रहे हैं, वो भी शास्त्र सुनता है, वो भी गुरु के पास जाता है, उपदेश सुनता है, वो भी भगवान की भक्ति करता है, दयादान उसकी भी प्रवृत्ति में है, परंतु मान्यता में क्या है, ये छोड़ने लायक है। ये मान्यता की बात अंदर नहीं, ये तो या तो प्रवृत्ति करना चाहता है या छोड़ना चाहता है, फिर क्या करूँ ऐसे प्रश्न उठता है, यानी करने धरने की बात उसको सूझती है, ये जानने वाली बात उसको पकड़ में नहीं आती, मानने वाली बात तो और भी पकड़ में नहीं आती। तो कहते कि ये है, ये छे कबूल करवामा, कबूल करना है केवल, छोड़ने की बात कहाँ किसी ने बताई, ये छोड़ दो और जाके पाप करो ऐसा किसने बताया, कुछ किसी ने नहीं बताया। पंडित जी दया दान व्रत भक्ति तप भगवान नो विनय आदि ए बधा भाव हेय छे राग छे, अजी ये राग हेय छे समझवामा कठन पड़े छे। हा हा, क्या मैं पहले में पहले मैं तो राग रहित हूँ, जो जो मैं जिससे रहित हूँ वो तो छोड़ने लायक है कि रख करने लायक है, कि वो करने से क्या वितरागता प्राप्त होगी क्या नहीं होगी, ये तो पहले नक्की करना है ना, ये नक्की अपने दिमाग में ही करना है। राग आएगा, अभी मुनियों को भी, अभी कुनकुंदाचार्य को शास्त्र लिखने का राग था कि नहीं था, तो वो करने लायक मानकर कर रहे, वो तो हो रहे उनके आ रहे हैं। ज्ञानी तो, ज्ञानी की तो अवस्था ही जुदी होती है, अभी तो यहाँ तो समय दर्शन प्राप्त होने के पहले किस तरह से उसको स्वीकारना है, कबूल करना है, उसकी बात है। अहीं तो परमात्मा इंद्रोनी वच्चे, यानी तीर्थंकर की बात है, सुधर्म स्वर्गना इंद्र एकावतारी, क्या कहते हैं, सौधर्म इंद्र जो होता है वो दूसरे भव यानी मनुष्य होकर नियम से मोक्ष जाता है, उसकी शची इंद्रानी भी, तो ऐसे वहां तो कितने 100 इंद्र होते हैं सभा में तीर्थंकर के ये समोशरण में 100 इंद्र होते हैं। तो कहते एकावतारी एक भवतारी छे शक्रेंद्र इंद्र छे, सौधर्म इंद्र का ही दूसरा नाम है शक्रेंद्र। सुधर्म देवलोक में 32 लाख विमान छे, एक एक विमान में घना में असंख्य अबज देव छे, 32 लाख विमान, विमान ने उनके जो रहने के जो ठिकाने हैं उसको विमान कहते हैं। एक एक विमान में असंख्य असंख्य देव छे, संख्याता देववाला थोड़ा छे, संख्याता देववाला छे पण ये थोड़ा छे, क्योंकि वो कितने संख्या त्योजन कितने असंख्या त्योजन, उसके जो विमानों की जो कुछ डायमेंशन होती है, कुछ तो संख्या त्योजन वाले भी संख्या देव वाले भी हो गए, जहाँ स्वयं इंद्र रहते हैं है ना, उनके तो बड़े बड़े महल ये वो हो गए। असंख्य देववाला घना छे एवा 32 लाख विमान एनो स्वामी, ये सौधर्म इंद्र का वर्णन चल रहा है। करोड़ों अप्सराओ छे आहा शक्रेंद्र छे, सिद्धांत मा लेख छे के एक भवतारी छे, ये तो नियम होते हैं कौन कौन, ये सारे जो दक्षिण के इंद्र है वो सारे नेक्स्ट भव में आकर यहाँ मोक्ष जाने वाले हैं। पहला नाम लेते वो दक्षिण के इंद्र है, जैसे सौधर्म और ईशान, सनत कुमार और महेंद्र, वो उत्तर के हैं, वो जा सकते हैं, उसका नियम नहीं है, दक्षिण वाले नियम से जाने वाले हैं। जैसे शची इंद्राणी, वैसे इंद्र के तो 8-8 पट्ट देवियां होती है, उसमें से शची नाम की जो है वो जाएगी मोक्ष नेक्स्ट भव में।
उत्तर वाले जा सकते
हैं, बिल्कुल कोई भी जा सकता है,
मतलब नहीं भी जा सकते हैं
बिल्कुल। हाँ, जो नियम से जाते हैं उसकी बात है,
यहाँ उनकी सची इंद्राणी जो होती है वो तो नियम से जाएगी कि नहीं,
किनकी सची, उनके नाम सची नहीं होगा,
उत्तर वाले
उनके जो नाम अलग होगी उनके, उनमें से कोई अभी समय दृष्टि है कहो या यहाँ आके समय, कोई भी अन्य भी जीव अरे निगोद में से निकल कर मोक्ष जा सकता है, तो उनकी क्या बात है, क्यों नहीं, इतने क्यों चौंक गए, बादर निगोद नहीं डायरेक्ट, यानी डायरेक्ट बादर निगोद से मनुष्य होकर डायरेक्ट मोक्ष जा सकता है, सूक्ष्म में से आकर मनुष्य होकर मुनि तक हो सकता है, मुनि बन सकता है, मोक्ष नहीं जा सकता। डायरेक्ट मनुष्य में निगोद आ सकते हैं, उसमें बीच में भव लेने की जरूरत नहीं है।
बादर मनुष्य मोक्ष जा सकता
है? बादर मनुष्य नहीं, बादर निगोद मनुष्य में आकर मोक्ष जा सकता है। सूक्ष्म निगोद मुनि हो सकता है उस भव में मनुष्य होकर। नियम है इन्हें ऐसे कोई नियम है? ऐसे अभी जो सदर्म इंद्र, उसके जो चार लोकपाल है, वो भी सारे, वो भी एक भवतारी, वो भी आकर यहाँ मोक्ष जाने वाले। बहुत सारे ऐसे वो जो इसके होते हैं ना, वो दीक्षा कल्याणक में आते हैं ना, लोकांतिक, लोकांतिक मुझे याद नहीं ना, वो भी मोक्ष जाने वाले। हाँ, स्वर्ग के आउटर बॉर्डर में उनके विमान होते हैं, वो भी नियम से मोक्ष जाते हैं। हाँ, सर्वार्थ सिद्धि वाले नियम से मोक्ष जाते हैं।
उसी में सर्वार्थ सिद्धि विमान बताए, सिर्फ
और विचार जा सकते हैं, उनका नियम नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि का नियम है ऐसा है। वो 33 सागर वाला है ना, पूरी 33 सागर की आयु वाले, वो तो जाएंगे मोक्ष। एक समय कम वाला है वो, और एक भव भी कर सकता है उसमें, देव का भी बीच में, वो भी जाएंगे, वो भी घूमेंगे नहीं अभी संसार में। हाँ, देखो एक आप नहीं, आपका प्रश्न ऐसा है, क्षायिक सम्यक तो हुआ, तो जिस भव में क्षायिक किया उसी भव में मोक्ष जा सकता है। एक बात, मनुष्य तिरियंचायु बांध कर बाद में क्षायिक हुआ होगा, या चरिंग जैसा पहले नरकायु बांध कर हुआ होगा, तो नरक में जाएगा या भोगभूमि में जाएगा? नरक में जाने वाला मनुष्य होकर मोक्ष जाएगा ही जाएगा। भोगभूमि वाला देव में, सौधर्म में ही जाएगा, सौधर्म ईशान में जाकर मनुष्य होकर मोक्ष जाएगा। और कोई ऐसा है कि जो क्षायिक समय दृष्टि है, देव का एक भव करके मनुष्य होकर मोक्ष जाएगा? शौक्षमिक वाला तो 66 सागर तक उसका उत्कृष्ट काल है, परंतु वो छूट सकता है, और छूट कर वो नहीं छूटा तो 66 सागर के बाद क्षायिक हो जाता है। नहीं छूटा तो यानी इतने 66 सागर तक रहने की भी जरूरत नहीं है, वो तो मैक्सिमम आयु नहीं, मैक्सिमम उसमें रहने का काल। अभी वो 66 सागर में कितने 15 भव हो सकते हैं, अभी देव के और मनुष्य के होते रहेंगे, उसके यथा योग्य हो जाएंगे। 15 भव का नियम नहीं है, 66 सागर का नियम है। अब उसमें देवों के कितनी बड़ी आयु वाले देव के भव करते हैं, तो कम भव में भी हो। हाँ, वो माँ बीच में तीसरे गुण स्थान में आया, होना ही चाहिए, ऐसा नहीं। पूरे 66 सागर उसी के होता है जो कृतकृत्य वेदक होकर शायक करता है। वो 66 सागर तक रहा, इसलिए अपने आप शायक नहीं होता। हाँ, करना चाहिए नहीं, उसके वो करण परिणाम से वो हो जाता है, और वो करण परिणाम में जो कृतकृत्य वेदक का काल है, उसको अगर इंक्लूड करेंगे तो ही एग्जैक्ट 66 सागर हो सकता है। अगर वो कृतकृत्य वेदक नहीं करेगा तो एक अंतर्मूर्त पहले तीसरे में जाएगा या पहले में आ जाएगा, बाद में फिर 66 सागर कर सकता है। मैक्सिमम किसी जीव की बात है, पर 66 सागर रहा इसलिए वो प्रकृतियां खिरते खिरते क्षायिक बन गया, ऐसा नहीं है। क्षायिक के लिए, क्योंकि अंत कोड़ा कोड़ी उसकी स्थिति बाकी है, तब भी 66 सागर किया तब भी, क्योंकि केवल 66 सागर समय दृष्टि रहा इसलिए वो खिरते खिरते निकल गए सब निशे का, ऐसा नहीं होता है। और वो 66 सागर भी वही करेगा जो मुनि भी होगा बीच बीच में। अकेले चौथे पांचवे में रहने वाला 42 सागर तक चल सकता है, और अकेले चौथे में वही चौथे पांचवे, और अकेले चौथे में रहने वाला तो 33 सागर कुछ अधिक, साधिक 33 सागर, क्योंकि 33 सागर में जाने वाला तो मुनिराज होते हैं। उसके बाद वहां से 33 सागर हमने गिनना शुरू किया, और फिर यहाँ मनुष्य में आकर 1 करोड़ पूर्व की भी आयु अगर लेता है तो मोक्ष जाएगा। चौथे पांचवे मिलकर 42 सागर होता है। छासर सागर उसी को होगा जो बीच में मुनिराज भी हो जाएंगे, वो उनको इंक्लूड करके छासर सागर तक उनका सम्यक तो बना रहेगा। पंद्रह भव जो बताए हुए हैं वो अपने शास्त्र में पंद्रह भव की बात आती नहीं कभी, मेरे ख्याल से श्रीमद में आता है। तो ये जैसे भी महावीर के दस भव हो गए, इस तरह से किसी के ऐसे होगी ना, देव सम्यक दृष्टि रहा, इस तरह से सम्यक दृष्टि रहा तो देव मनुष्य। हाँ, पहले जिस भव में उसने सम्यक तो प्राप्त किया है, जैसे किसी नारकी ने प्राप्त किया तो नारकी में से मनुष्य में आया, और बाद में सम्यक तो बना रहेगा तो देव मनुष्य होता रहेगा। या किसी तीर्यंच ने सम्यक तो प्राप्त किया तो देव हो जाएगा बाद में, सम्यक तो के बने रहते हुए फिर मनुष्य, फिर देव, फिर मनुष्य। जैसे सिंह की पर्याय में महावीर को हुआ था, पहले उसके तीर्यंच की पर्याय में हुआ, फिर देव में गया, फिर मनुष्य, फिर देव, फिर मनुष्य, फिर देव। अभी जब कभी मुनिराज हो गए तो और ऊपर के स्वर्गों के आयु बांध के ऊपर भी जा सकते हैं, यानी कितने भव हो गए ऐसा कुछ उसमें नहीं। छासर सागर किस तरह से हो सकते हैं,
लेकिन यहाँ
दृष्टि अभी पांचवे काल की बात है।
हाँ,
क्षयोपशम समय दृष्टि,
क्षयोपशम के साथ वो मरेगा नहीं ना,
क्षयोपशम के साथ मरेगा और देवायु बंदी होगी तो उसके साथ मरकर देव में जा सकेगा, परंतु अन्य तीन गतियों या भोगभूमि में जाने वाला या नरक में जाने वाला क्षयोपशम सम्यक तो लेकर नहीं जा सकता। हाँ, अगर उसने वहाँ की किसी ने मनुष्य ने पहले मनुष्यायु बांधी है और अभी उसने सम्यक तो प्राप्त किया है, सम्यक तो वही होगा ना, औपशमिक या क्षयोपशमिक होगा, तो वो सम्यक तो लेकर कहीं अन्य मनुष्य में नहीं जाएगा।
पहले मिथ्या तो में आके फिर मर के वहाँ
जा सकता है
और वहाँ समय दर्शन प्राप्त कर सकता है,
कर सकता है और नहीं भी कर सकता। नहीं, क्षयोपशमिक वाला, क्योंकि भोगभूमि के आयु मिथ्या दृष्टि ही बांधता है। एक बात, मिथ्या दृष्टि को ही भोगभूमि की आयु बनती है, क्योंकि मनुष्य सम्यक दृष्टि देवायु ही बांधेगा। जब तक तो वो मिथ्यात्व में था तब उसने मनुष्यायु बांधी होगी, परंतु अभी पंचम काल का मनुष्य अभी वो तो क्षायिक नहीं हो सकता, वो सम्यक्त्व लेकर वहां नहीं जा सकता, मिथ्यात्व में जाकर जा सकता है, देव में सम्यक्त्व के साथ जा सकता है। अभी यहां से कोई कहते ना हम सिमंदर के भगवान के पास जन्म लेंगे, हाँ मिथ्या दृष्टि होगी तो जा सकते हैं, सम्यक्त्व लेकर नहीं जाएंगे। और वहाँ विदेह क्षेत्र में जन्म न, वहाँ पर भी एक आर्यखंड और पांच पांच मलेंच खंड है, वहाँ का मलेंच हुआ तो अरे हाँ, अरे पन क्या आज तक क्या कभी भगवान का समय तीर्थंकरों को सुना नहीं है, साक्षात गया और वहाँ समोशरण में भी पहुँच गया, इसलिए कल्याण होने वाला है, नहीं होता है ना, निमित्त से नहीं होता, अपने उपादान से होता है।
इस हुंडा और सर्वे काल में, इस पंचम काल के
इस
यहाँ भरत क्षेत्र में कोई जीव पंचम गुण स्थान प्राप्त कर सकता है या चतुर्थ में ही रह सकता है, ऐसा पुरुषार्थ नहीं होता जो
आपका ऐसा कहना, इस हुंडा और सर्पिणी काल में क्या पंचम गुण स्थान को प्राप्त कर सकता है, चतुर्थ में रहता है, अरे मुनि भी हो सकता है, सातवें गुण स्थान तक का पुरुषार्थ है ना, और वो पंचम काल के अंत तक है और उनके नाम भी प्रसिद्ध है शास्त्र में बताए हुए, तो चौथे पांचवे जो मुनि बन सकता है तो चौथे पांचवे की क्या कथा हो सकता है। हम तो केवल यही से चर्चा सुनते हैं ना, तो वो ये तो ज्ञान कराने के है कि कौन से काल में कौन से सहनन में क्या पुरुषार्थ हो सकता है, पर हमारी नजर वो अरे हम आप सब ये कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास तो शुद्धात्मा हम स्वयं है और वो तत्व निर्णय करने वाला ज्ञान हमारे पास है, इतना इंटेलिजेंस है हमारे पास, क्यों नहीं कर सकते, पर हम ये पंचम काल में क्या होगा और इसके सहनन में क्या होगा, ये बाह्य की वो ज्ञान के लिए चर्चा के लिए है परंतु आदरण के लिए नहीं है। एक ज्ञान का एक है, वो एक विषय है, परंतु मुख्य करने लायक बात तो ये है जिसको हम दृष्टि का विषय वगैरह कहते हैं, वो दृष्टि में लेने के लिए है, उसको भी हमने क्या बनाया, चर्चा का विषय, वाद विवाद का विषय। मैं ये यही करना है, करने लायक यही है, परंतु जब उसमें उपयोग अभी उसमें उस विचार में उपयोग नहीं है तो क्या पढ़ेंगे? फिर जाके कुछ मैगजीन नहीं पढ़ेंगे क्या? न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं बैठेंगे? उसको रुचि किसके? अब इसी के बारे में और बढ़ू, क्योंकि ये बाकी जो विषय पढ़ने से, भले वो त्रिलोक की रचना हो या मुनिराजों के लिए भी वही सहाय है ना, वो क्या करेंगे दिन भर, किसका विचार करेंगे? तो ये करणानियोग के ग्रंथ क्यों लिखे मुनिराजों ने? तो उसमें अपना उपयोग रहता है और ज्यादा ये पूरा बिल्कुल ऐसा प्रत्यक्ष वत्त वो ज्ञान हो जाता है इतना सारा। उसी के बारे में विचार आते हैं, कोई दुनियादारी की इसने ये कहा उसने ये, झंझट ही नहीं कोई वहां पर। रात भर भी हमारे तो यही सपने चलते हैं क्या? ऐसा लगता है सोच, नींद में कोई गलत तो नहीं सोच रहे ना, ऐसे कुछ कुछ मार्गना की बात, बंद की बात, इसके बाद चलती रहती है। क्योंकि हम दिन भर जो देखेंगे विचार करेंगे वही, अभी कोई सीरियल देखते तो उसी, अरे ये ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये क्यों नहीं, न्यूज देखते तो अरे उधर ऐसा हुआ, ये इधर इतना भूकंप हुआ, उधर ये ब्रिज टूट गया, इतने दो दो एसटी बह गई, उसी की बात आते कि मन में विचार तो आते ही कि नहीं उसके? जब इसको हम पढ़ते हैं और रुचिपूर्वक इसको ग्रहण करें तो इसके भी विचार चलेंगे। रोटी बनाते समय अरे ये तो कार्य रोटी का वहाँ आटे का हो रहा है, होता है कि ऐसा, उसके विचार चलेंगे। हाँ अभी सुन, ऐसा ही है जिसको कहते हैं ज्ञानाभ्यास चले मन माही, ये एक घंटा हमने सुना है और उसका एप्लीकेशन जो है उस बारे में जो सोचना है तो वो दिन भर चलेगा। जो कुछ कार्य हो रहा है करते हुए भी लगेगा अरे ये इसका कार्य हो रहा है, ये पुद्गल का कार्य पुद्गल में हो रहा है, ये भाषित होता है प्रत्यक्षवत।
लेकिन ये पुद्गल का कार्य, जब सब्जी जल जाती है तो वो पुद्गल का कार्य, पर सब्जी अच्छी होगी तो मैंने,
तो मैंने किया। देखो ये जो तीव्रता भी कम होगी कि नहीं राग द्वेष की, देश की नहीं होगी, राग की होगी। अरे पन वो भी मैं उस रूप नहीं हूँ, द्वेष है ना क्या, क्रोध मान के परिणाम ये द्वेष है ना। हाँ क्रोध भले हो जावे परंतु यहाँ तो यही हम उसको कम करने की कोशिश में लगे रहते हैं, हम वैसा बोले नहीं करना, वितरागी हो जाए तो नहीं करोगे, पर उसके लिए क्या है, पहले में पहले वो मेरे में नहीं है, मेरा नहीं है ऐसे सोचना है, तब वो निकलेगा। क्योंकि समय दृष्टि को मुनियों को भी है कि नहीं राग, किसके प्रति, शास्त्र लिखने का राग है कि नहीं है रे, तो उसे रहित कहाँ हो गए, वो भी नहीं करना चाहते, परंतु हो रहा है उसको भिन्न जानना, ये मुख्य बात है, होने वाले राग को भिन्न जानना है, बनने वाली रोटी को मेरा कार्य नहीं ऐसा जानना है, और अपने में उठने वाले राग को ये मैं राग द्वेष रूप नहीं हूं ऐसा जानना है। दुनिया का सारा उपदेश क्या कहते हैं, क्रोध कम कर दो, ये तुमको शोभा नहीं देता हाँ? और वो फटक आ जाता है ना।
क्रोध कम तो ये करते हैं, मान माया लोग कम तो
हाँ, वो नहीं कहते ना, वो अच्छा मानते हैं उसको, जितका लोग करो परिग्रह बड़ा वो अच्छा है। क्या सोचना, दूसरे कहने से सोचेंगे नहीं वो। देखो जो हमने आपने सुना वहाँ, रोटी रूप कौन परिणमित हो रहा है, आटा, वो उसका कार्य है, आटे का कार्य है रोटी, उसमें निमित्त भले वो पाटला है, पाटला ने जिसको अडानी कहते हैं, वो बेलन है, तवा है, अग्नि है, गैस है, हाथ है, मेरे विचार है, इच्छा जो है, अनेक निमित्त है वहाँ पर, परंतु वो कार्य किसका हो रहा है, उसमें हो रहा है। अभी ये बात आपकी हुई नहीं, अभी निमित्त उपादान की जब चर्चा आ जाएगी वो मूल बात है, उसके लिए पहले द्रव्य क्या है, उसके नाम क्या है, पर्याय किसको कहना, वो सब सीखना पड़ेगा। क्या कहते, देखो त्यांती मनुष्य थईने मोक्ष जवाना चाहिए, शर्केंद्र की बात है ना, सिद्धांत मालिक छे, सिद्धांत ने करणानियोग के ऐसे नियम है, कौन जाता है नेक्स्ट भाव में वगैरह। अभी कोई कहते ना यहाँ से वो सीमा विदेश क्षेत्र में जाके वहां से मोक्ष हो जाएगा किसी मनुष्य का, तो समझना भले यहाँ समय दृष्टि है, मरण के पहले मिथ्यात्व में गया, वहां जन्म लिया, वहां से मोक्ष गया, हो सकता है किसी का ऐसा। क्यों नहीं जा सकता? मिथ्यात्व में जाकर जा सकता है, पहले बांधी हो या बाद में बांधी हो, कैसे भी मिथ्यात्व आने के बाद भी बांध सकता है ना, पॉसिबिलिटीज है ना। ऐसे शास्त्र में भी आता है इतने जीव भद्र जीव ऐसा है यहाँ से विदेह जाके वहां से मोक्ष जाने वाले ऐसा आते हैं। हाँ वो सब हाँ आगे बढ़ते हैं। अने एनी एक पटराणी रानी देवी छे, पटराणी तो राजा की रानी कहते हैं, पर वो देवों की देवी कहते हैं, उनको पट्ट देवी कहते हैं। एक यानी वो शशि इंद्राणी जिसको कहेंगे, ए देवी उपजे तारे तो मिथ्या तो है, क्यों सम्यक्त सहित कोई स्त्री पर्याय में उत्पन्न नहीं होता, कोई स्त्री जन्म से सम्य दृष्टि नहीं होती। हाँ स्त्री पर्याय वाला जीव सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, देवी है, देवी भी जन्म से कोई भी देवी सम्य दृष्टि नहीं है। अब वो शची वो पटरानी है, वो भी बाद में सम्य दृष्टि हो गई वहां जन्मने के बाद, और वहां आकर वो यहाँ आकर भी पुरुष होकर मोक्ष जाने वाली उसी भाव में, वो तो नियम है उसका। पद्मावती अभी बाद में हुई होगी, हमको क्या मालूम, वो जन्म से नहीं थी। और वो भगवान की भक्त है, ये जो देवियां जो है ना, जो जो कुछ जिसको कहें 24 तीर्थंकर की जो कुछ माता ही नहीं कहते उनको, देवी यक्षिणी होती, यक्षिणी यानी वो तो शासन देवियां कहते उनके, तो ऐसे होती है, वो तो भक्त है ना, जैसे हम भक्त है भगवान के वैसे वो भक्त है। जन्म से वो भी मिथ्या दृष्टि है, सारे भवनत्रिक वाले सारे जन्म से मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, बाद में वहां पर भी कोई सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं, सम्यक तो प्राप्ति का निषेध नहीं है। तो जैसे हम भक्त है वैसे वे भी भक्त है, हम एक दूसरे को जय जिनेन्द्र कहेंगे, इतना सत्कार करेंगे, इतना वात्सल्य करेंगे, उतना उनका ठीक है, परंतु उनकी अगर पूजा करेंगे, अर्घ्य देते हैं, तो ये मिथ्यात्व है, गृहित मिथ्यात्व है। हाँ अभी कुछ ना कुछ नाम देते हैं, कुछ कुंकू लगाओ, ओटी भरो, वस्त्र पहनाओ, ये तो ये क्या है ये सब, और वो कहाँ मंदिर में भगवान के सामने वो बात चल रही है। हम भगवान के सामने अन्य भक्त का जय जिनेन्द्र करते हैं, हाथ भी नहीं जोड़ते हैं मंदिर में, बाहर भले आप भी नहीं करो, या भगवान मंदिर में कोई अपने से बड़े है बहुत विद्वान है उनको पैर छूकर नमस्कार भी नहीं कर सकते उनका, ये भगवान का अभिनय हो जाता है। ये कुछ ये तो विवेक इतना अपन को रखना पड़ेगा। तो मेरा ये प्रश्न है अभी पद्मावती देवी अभी पद्मावती के रूप में जिंदा है कि नहीं है? हाँ है, क्यों है, क्यों है? हाँ मिनिमम 10,000 है, तो 10,000 अभी 10,000 वर्ष कहाँ हुए है? 300 साल तो महावीर और पार्श्वनाथ के बीच में हुए, बाद में 2500-2600 हुए ना, करीबन 3,000 तक हो गए हैं, परंतु वो तो अभी मिनिमम तो 10,000 वर्ष की होती है, वो ज्यादा ही है वहाँ की, स्त्रियों की पल्ले प्रमाण नहीं होगी वहाँ की। हाँ कि देवी की आधी होती है वहाँ की, देवी की ज्यादा नहीं होती।
मेरा एक प्रश्न है, हाँ जैसा आपने अभी बताया ये जो देवियाँ होती है वो उनकी पूजा करने योग्य नहीं है, जो देव होते हैं उनकी भूमिया जो है वो,
अरे कोई नहीं, वो तो समय दृष्टि भी है कि नहीं क्या पता। यहाँ तो कहते हैं ये अभी उसकी बात छोड़ो, सौधर्म इंद्र है वो तो समय दृष्टि है और आके मोक्ष जाने वाला है, उसकी भी पूजा करते नहीं है। चौथे गुणस्थान वालों की पूजा नहीं होती है, पांचवे वालों की भी पूजा नहीं होती है, पूजा अर्घ्य चढ़ाना ये बात किसकी होती है? मुनिराजों की, शास्त्र की हो सकती है और देव की हो सकती है। देव गुरु शास्त्र, कौन से गुरु? गुरु यानी मुनिराज, मुनिराज यानी दिगंबर मुनि, तीन कषाचे चोकड़ी अभाव पूर्वक, और जो दिगंबर निर्ग्रंथ मुनिराज है उन्हीं की पूजा कर सकते हैं, उनको अर्घ्य चढ़ा सकते हैं। बाकी चौथे पांचवे गुण स्थान वर्ती कितने भी वो उनके हमने उनसे सीखे, वो हमारे विद्या गुरु है, वो गुरु जी यानी गुरु जी है, वो देवगुरु शास्त्र वाले गुरु नहीं है। उनका बहुमान करेंगे, विनय करेंगे, आदर करेंगे, हम माँ बाप के पैर छूते उनका पैर छूएंगे, परंतु ऐसे वो पूजा अर्घ्य चढ़ाना ये बात उनकी नहीं हो सकती। बहुत विषयांतर हुआ है ना, यही रुकेंगे अभी हम, ये तो कल पढ़ेंगे। यहाँ पर बताए ना देवी उपजे तेरे मिथ्या तो होए ना, वहां से फिर पढ़ेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नंग सदा देत होलो।
नमो यंत्रानं नमो सिद्धानं नमो।